नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। रूस के विदेश मंत्री ने कहा, रूस, भारत और चीन साझा हितों के आधार पर सहयोग बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस पर प्रतिबंधों का दूसरा चरण लगाने के लिए तैयार। दुनिया भर के लोगों ने अद्भुत पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा। भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता। अगले वर्ष के FIH विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई किया। और अमरीकी ओपन टेनिस में कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर अपना दूसरा सिंगल्स खिताब जीता, फिर से शीर्ष रैंकिंग हासिल की। और अब समाचार विस्तार से। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस, भारत और चीन साझा हितों के आधार पर परस्पर सहयोग मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में नजर आई एकजुटता की ओर संकेत किया। एक रिपोर्ट।
श्री लावरोव ने कहा कि आर्थिक विकास, सामाजिक समस्याओं का समाधान और जीवन स्तर में सुधार तीनों देशों का समान लक्ष्य है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की एकजुटता ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा था। श्री लावरोव ने कहा कि ये निकटता वैश्विक शक्ति में बदलाव को दर्शाती है। इसी दृश्य ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सोशल मीडिया पर ये कहने पर बाध्य किया कि अमरीका ने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। ये स्थिति रूस से तेल की खरीद को लेकर अमरीका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने से उत्पन्न तनाव के बीच बनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे रूस पर प्रतिबंधों का दूसरा चरण लगाने को तैयार हैं। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में अमेरिका के अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर ये टिप्पणी की थी। इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दूसरे चरण के प्रतिबंध लागू करते हैं तो रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद आया है। इस हमले में यूक्रेन के प्रमुख कार्यालय ध्वस्त हो गए। विश्व दर्पण के लिए निखिल कुमार।
भारत ईरान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर बल देते हुए मध्य एशियाई देशों को एकजुट करने की नीति मजबूत कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली अकबर अहमदिया से फोन पर बातचीत की और क्षेत्रीय घटनाक्रमों के अलावा चाबहार परियोजना सहित परस्पर सहयोग पर विचार विमर्श किया। ओमान की खाड़ी स्थित चाबहार में शाहिद बहश्ती टर्मिनल को महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। इससे भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधे पहुंच उपलब्ध होगी। भारत ने बंदरगाह में कार्गो और कंटेनर टर्मिनल के परिचालन के लिए मई 2024 में ईरान के साथ 10 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराकची ने कहा है कि ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA एक नए सहयोग समझौते के करीब, बहुत करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने ये बात तेहरान में एक सम्मेलन के दौरान कही। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार उनकी ये टिप्पणी शुक्रवार को ईरान और IAEA के बीच शुरू हुई ताजा बातचीत के बाद ये सामने आई है। श्री अराकची ने अमरीका के साथ संभावित परमाणु वार्ता का भी संकेत दिया। उन्होंने बताया कि मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। लाल सागर में समुद्री केबल की सिलसिलेवार खराबियों के कारण कल भारत और दक्षिण एशिया के कई देशों में इंटरनेट सेवाएं बाधित हुईं। इंटरनेट कनेक्टिविटी नियामक संस्था नेट ब्लॉक्स ने बताया कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित कई देशों में इंटरनेट की गति धीमी हो गई है और इंटरनेट सेवा में बार बार रुकावटें आ रही हैं। नेट ब्लॉक्स के अनुसार भारत भी प्रभावित देशों में शामिल है, लेकिन भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने कहा कि घरेलू डेटा नेटवर्क पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। ऑपरेटरों ने बताया कि उनके नेटवर्क में बैकअप सिस्टम मौजूद है और समुद्री केबलों के कई रास्तों से इंटरनेट सेवा जारी रखने की व्यवस्था की गई है। प्रभावित प्रणालियों में से एक दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, पश्चिमी यूरोप 4 केबल हैं, जिसे टाटा कम्युनिकेशन सहित एक संघ द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के बीच तोड़फोड़ की आशंका जताई जा रही है, लेकिन घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। नाइजीरिया में उग्रवादी संगठन बोको हराम ने उत्तर पूर्वी बोर्नो राज्य के दारुल जमाल गांव पर रात में किए हमले में 60 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार देर रात शुरू हुए इस हमले में नाइजीरिया कैमरून सीमा के पास एक गांव को निशाना बनाया गया। इस हमले में पास के एक अड्डे पर तैनात 5 सैनिक और 13 पुनर्निर्माण कर्मचारी मारे गए। नाइजीरियाई वायुसेना के प्रवक्ता एहमेन एजादोमे ने कहा कि नाइजीरियाई वायुसेना ने हमले करके जवाबी कार्रवाई की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दुनिया भर में इस वर्ष दूसरा चंद्र ग्रहण देखा गया। रात 9:57 से शुरू होकर 11:01 तक पृथ्वी की छाया ने चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे ब्लड मून का दुर्लभ नजारा देखने को मिला। पूर्ण चंद्र ग्रहण रात लगभग 11:48 पर चरम पर था और लगभग 12:22 पर समाप्त हुआ। चंद्र ग्रहण पूरे भारत में लगभग 48 तक स्पष्ट रहा। यह बिना किसी उपकरण के खुली आंखों से भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। चंद्र ग्रहण पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाने से लगता है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की सतह तक नहीं पहुंच पाता। नवोदित फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म समारोह में अपनी फीचर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोंटी पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। इस फिल्म को समारोह में अनुराग कश्यप ने प्रस्तुत किया था। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित ये कहानी दो महिलाओं की है, जिनकी जिंदगियां अचानक आपस में जुड़ जाती हैं। इससे पहले ये चैतन्य तहाणे की कोट और करण तेजपाल की स्टोलन जैसी भारतीय फिल्मों को सम्मानित कर चुका है। वेनिस फिल्म समारोह का ओरिजोंटी खंड सिनेमा में नवोन्मेषिया आवाजों को पहचानने के लिए जाना जाता है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है। ये फिल्म शिक्षा और दृढ़ता के माध्यम से परिवर्तन की कहानी पर आधारित है। अगले महीने इसका वैश्विक प्रीमियर होगा। बांग्लादेश में प्रतिबंधित अवामी लीग के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कल ढाका में संसद परिसर के पास एक विरोध मार्च निकाला और पार्टी प्रमुख शेख हसीना के समर्थन में नारे लगाए। एक रिपोर्ट।
ये रैली राजधानी भर में अवामी लीग समर्थकों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला का नवीनतम उदाहरण है। पिछले शुक्रवार को हजारों लोग तेजगांव में एक मार्च में शामिल हुए, जबकि एक हफ्ते पहले गुलिस्तान में बैतूल मुकर्रम मस्जिद के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। शेख हसीना पिछले वर्ष 5 अगस्त को एक जन आंदोलन के बाद देश छोड़कर चली गई थी, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 8 अगस्त को एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली और तब से अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है और वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया है। हसीना और अन्य पर जुलाई के विद्रोह से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप हैं। प्रतिबंध और अपनी नेता पर कार्रवाई के बावजूद आवामी लीग के कार्यकर्ता ढाका और देश के अन्य हिस्सों में छिटपुट प्रदर्शन आयोजित करते रहते हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
वहीं बांग्लादेश के राजबाड़ी में शनिवार को एक दरगाह पर भीड़ ने दावा बोल दिया। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। मामले में कार्रवाई जारी है। अंतरिम सरकार ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे अमानवीय और घृणित बताया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार पाल।
जी फरहत, खेलों की खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हॉकी से। भारत ने एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। बिहार के राजगीर में कल प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने पिछले चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। इसके साथ ही भारत ने नीदरलैंड्स और बेल्जियम में अगले वर्ष होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत की तरफ से सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और अमित रोहिदास ने गोल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को इस शानदार खिताबी जीत पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये भारतीय हॉकी और खेल जगत के लिए गौरव का क्षण है। श्री मोदी ने खिलाड़ियों को नई उपलब्धियां हासिल करने और देश को गौरवान्वित करने की कामना की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि ये खिताबी जीत मैच दर मैच प्रदर्शन में सुधार का परिणाम है। और फरहत, अगर बात करें टेनिस की, तो अमरीकी ओपन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल रात कार्लोस अल्काराज ने यानिक सिनर को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। अल्काराज ने सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से मात दी। इस जीत के साथ ही अल्काराज ने पुरुष टेनिस में शीर्ष रैंकिंग फिर से हासिल कर ली है। इसके अलावा शतरंज में भारत की दिव्या देशमुख ने कल रात उज्बेकिस्तान में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 के ओपन वर्ग में मिस्र के बासेम अमीन को 4th राउंड में हराया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के विदेश मंत्री ने कहा, रूस, भारत और चीन साझा हितों के आधार पर सहयोग बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस पर प्रतिबंधों का दूसरा चरण लगाने के लिए तैयार। दुनिया भर के लोगों ने अद्भुत पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा। भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप हॉकी का खिताब जीता। अगले वर्ष के FIH विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई किया। और अमरीकी ओपन टेनिस में कार्लोस अल्काराज ने जेनिक सिनर को हराकर अपना दूसरा सिंगल्स खिताब जीता, फिर से शीर्ष रैंकिंग हासिल की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।